मैं हूं कमर अब्बास जाफरी और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ईरान और चीन के दरमियान एक मुतवक्के स्ट्रेटजिक माहदे की। इत्तलात के मुताबिक ईरान और चीन के दरमियान एक 25 साल स्ट्रेटजिक माहदा तय हो रहा है। इस माहदे का मकसद क्या है, खित्ते के लिए इस माहदे का क्या मतलब है और अमरीका और यूरोप के नुक्ते नजर से इस माहदे के क्या असर पड़ेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तेहरान से डॉक्टर राशिद नकवी, जो कि तेहरान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और सहाफी और तजियाकार हैं, अमरीका की फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के नायब सदर इलान बर्मन और बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान जेरी के रुकन अफजल खान। राशिद नकवी साहब, ईरान इस माहदे से क्या हासिल करना चाहता है और ईरान में खुद इस माहदे के बारे में क्या तासुरात हैं?
इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया जा रहा है और खुद वजीर खारजा ने भी जो इसके लिए लफ्ज और इस्तलाहें इस्तेमाल की है वो भी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है। तो इसको एक जिसे आप कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक असूल और कवायद, उसके अंदर देखने की जरूरत है कि इस वक्त ईरान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है और जिस अंदाज से मगरब और अमेरिका से उसकी उम्मीदें खत्म हो रही है, तो वो यकीनन यूरोप से एशिया की तरफ अपना वज़्म डालना चाह रहा है, उसकी तवज्जो उसकी ज्यादा उसी तरफ पड़ रही है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के अंदर भी इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे या इस 25 साल जो दस्तावेज है इस पे इख्तलाफात सामने आए हैं। कुछ सबका सदूर ने इस पे इतराजात किए हैं, कुछ पार्लियामेंट के अराकीन की तरफ से भी तबसरे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हुकूमत तो एक ही पेज पे है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत की तरफ से और वजीर खारजा भी और कहीं से हुकूमत के अंदर से कोई ऐसी मुखालफत की आवाज सुनाई नहीं दी। अमूमी तौर पे मीडिया के अंदर जो आमी मुखालिफ धड़े हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जितने ईरान के आइसलैंड थे या जितने जजायर इन्होंने आबाद किए, कीश कहे या मसल इसी तरह जो चाबहार वगैरह है, तो ये इन्होंने फरोख्त कर दिए हैं और ये हो जाएगा 25 साल में और चीन हम अमरीकी मुआसरे से निकल के चीन के उसमें चले जाएंगे और ये भी इस्तेमार है और ये भी साम्राज्य है, सिर्फ रंग बदल जाएगा। तो ये बहरहाल इख्तलाफात और हिमायतें दोनों तरह से हो रही है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक माहरीन है वो इसको खुशायंद करार दे रहे हैं कि ईरान अगर मशरिक की तरफ एशिया की तरफ पलटेगा तो मुस्तकबिल एशिया का है और जिस अंदाज से दुनिया आइंदा मुस्तकबिल एशिया की तरफ देख रही है तो उससे जितना चाइना के साथ इनकी पार्टनरशिप और ताल्लुकात स्ट्रेटजिक नोयत के होंगे वो मुस्तकबिल में उतना उसका फायदा होगा।
अच्छा।
और यूं भी जो ये सिंगल रोड वाला जो उनका सिंगल बेल्ट
वन बेल्ट वन रोड
जो ब्रिज वन बेल्ट वन रोड वाला जो इनका है उसमें जाहिर है कि 5 अरब से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ईरान को भी उसमें होना चाहिए, एक संजीदा राय यहाँ पे तो है इसके बारे में।
अच्छा, ये बताइए कि इसके कोई फौजी इम्प्लीकेशंस भी होंगे, कोई फौजी तावुन भी होगा?
देखिए, अभी तो दो चीजों पे यहाँ का मीडिया जिसको ज्यादा उठा रहा है वो है ट्रेड के मसले में और ये जो करेंसी के प्रॉब्लम है बैंकिंग और ये वो चीजें जो डॉलर्स की वजह से ईरान को मुख्तलिफ जगहों पे मुश्किलात हैं, एक वो है और जाहिर है चाइना के साथ ट्रेड भी इस वक्त बहुत ज्यादा है। फिर एक तीसरी चीज जो है वो चाबहार की भी है। चाबहार इस वक्त इंडिया के साथ ईरान के बहुत अच्छे मुआहदे हुए हैं, पाकिस्तान उससे खुश नहीं है और गवादर के साथ उसकी रिकाबत और राइवलशिप की बातें चल रही हैं, लेकिन अगर चाइना के साथ जितनी कुर्बत होगी तो ये जो इख्तलाफात जो इलाकाई इनके हमसायगी के उनवान से जो पाकिस्तान और गवादर के उनवान से हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अलबत्ता इसमें इंडियन जो है वो अपनी लॉबीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ पे मीडिया में बाज़ महसूस होता है कि इंडियन लॉबी जो है वो इन ताल्लुकात पे खासकर जो है वो जो समंदरी रास्ते पे जो ट्रेड होनी है और चाबहार और गवादर की कुर्बत और फिर चाबहार से बंदर अब्बास और ये पूरा जो इनकी जो बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं या जो इनके आइसलैंड है बिलखसूस कीश का जो है जो इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार के रुमान से कुर्बत आई थी उसकी तरफ बहरहाल एक कुछ ना कुछ तो उस पर भी असरात मनफी पड़ सकते हैं इसके।
चीन के साथ ये जो माहदा होगा ये इसमें कितना वक्त लगेगा, कब तक ये फाइनलाइज हो जाएगा, कुछ इस बारे में इतलात हैं?
देखिए अभी तक इसको तीन बड़े, आप समझते हैं कि इस पे मीटिंग्स हो चुकी हैं। ये जो आखिरी बार है, जो जवाद जरीफ साहब जो आखिरी वो पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके गए और उस पे फाइनल हो गया, और कैबिनेट के अंदर भी तकरीबन उस पे ओके हो चुकी है बातें। अब ये है कि उसको बात तो यहाँ तक कह भी रहे हैं कि कुछ चीजें तो शुरू भी हो गई हैं, यानी प्रैक्टिकल काम इस दौरान ही कि वो फाइनल होता, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अगर जो स्ट्रेटेजिक इस वक्त जो इलाके ही सूरत हाल जिस अंदाज से है, अगर इस तरह रहती है तो ये बहुत जल्दी इस पे काम शुरू कर देंगे। लेकिन एक, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया ना, कि एक हल्का अब भी ये कहता है कि हमें यूरोप से ज्यादा फायदे हैं, अगर हम उनसे अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए तो वो माजी की मिसालें दे के जो है वो कहते हैं कि उससे हम ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। लेकिन जाहिर है इस वक्त जब इनका एटमी माहदे पे यूरोप ने उस अंदाज से साथ नहीं दिया, और इनके बैंकिंग के और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के और ऑयल एक्सपोर्ट के मसाइल रहे हैं, और यूरोप कोई बाकायदा, यूरोपीय यूनियन ने कोई बाकायदा खुल के इनको सपोर्ट नहीं किया, तो इनकी नजरें चाइना की तरफ है।
बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब आपका। और जब एलान बर्मन से मैंने ये सवाल किया कि अमरीकी नुक्ते नजर से इस माहदे का क्या मतलब होगा, तो उनका कहना था
सो दिस इज ए potentially enormously significant development both for Iran and for the United States. The Trump administration has spent a year and a half applying a growing array of economic and political pressures on Iran in an attempt to isolate it internationally and to change its international behavior. That pressure is working, as you can see from the collapse of the Iranian national currency, the decline of the Iranian stock market, and the overall decline of the Iranian economy. Here, Iran is increasingly isolated and it's looking for international partners. And China has emerged as a potential game changer for the Iranian.
एलान बर्मन कह रहे थे कि ये ईरान और अमेरिका दोनों के लिए एक इंतहाई अहम वाकया है। ट्रंप हुकूमत ने 1.5 साल लगाए हैं ईरान पर दबाव डालने के लिए और बैन अक्वामी सतह पर उसको अलग थलग करने के लिए, ताकि वो आलमी सतह पर दुरुस्त रवैया अख्तियार करे। और अब ये दबाव काम कर रहा था, जैसा कि ईरान की करेंसी की तबाहली और मीशत की खराबी से जाहिर है। और ईरान अलग थलग होकर रह गया था और वो आलमी सतह पर किसी पार्टनर की तलाश में था, और ऐसे में चीन एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया। और अगर ये माहदा हो जाता है तो बीजिंग और तेहरान के ताल्लुकात और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। इसके सबब चीन पर ईरान का इंहिसार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और चीन ईरान की सिक्योरिटी का जामिन बन जाएगा। यूं चीन माजी के मुकाबले में आइंदा अमेरिका के साथ बराह रास्त ज्यादा मुसाबकत और मुकाबले की पोजीशन में आ जाएगा। एलान बर्मन का कहना था कि भारत और चीन के दरमियान हालिया कशीदगी के हवाले से ये दिल्ली के लिए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। अफजल खान साहब, आप बरतानवी पार्लियामेंट के अवान जेरिंग के रुकन हैं, ये बताइए कि जो इस वक्त चीन के हवाले से यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक फासला नजर आता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ईरान और चीन के दरमियान जो मुतवक्के एक माहदा है, स्ट्रेटेजिक माहदा 25 साला, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो खित्ते पर और दुनिया पर किस तरह असरअंदाज होगा?
जी, पहले तो यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि मैं समझता हूँ कि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तो नॉर्मल जो रिलेशनशिप पास्ट में देखी जाती थी, क्लोजनेस देखा जाता था, ये कोल्ड की तरफ जा रहा है, ये रिलेशनशिप एक्चुअली स्ट्रेंड हो रही है। आपने देखा कि नेटो के नुकता नजर से भी उनकी जो गुफ्तगू थी, यहाँ के एटीट्यूड था, फिर यहाँ पे जो डील होने के हवाले से यूरोपीय यूनियन की तरफ से ट्रेड वगैरह की वो चीजें हैं, और फिर बरतानिया भी खुद ब्रेक्सिट वहां से हो रहा है, तो इस पे भी एक पॉइंट है कि बरतानिया और अमेरिका के ट्रेड के नुकता नजर से कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तो ये टेंशन मुख्तलिफ लेवल्स पे बढ़ रही है। एक तो खुद अमेरिका के नुकता नजर से कि कि वो जो ट्रेड चाइना के हिसाब से है वो समझता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है अमेरिका के। फिर कोविड-19 के नुकता नजर से भी ये ब्लेम गेम चीज चलती रहती है, चल रही है। और जो ईस्टर्न साइड पे चीजें हैं वहां पे रैपिडली चेंजेस हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका की थिंकिंग है कि वो किस तरह कंटेनमेंट चाइना को करे, और दूसरी तरफ चाइना भी अपने मुख्तलिफ डेवलपमेंट रिलेशनशिप्स को कर रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान चाइना की सीपैक का नुक्ता जो है वो वहां पे है, चाइना इंडिया की टेंशन भी बॉर्डर लदक के हवाले से हुई है। इसी तरफ ईरान और अमेरिका की पुरानी अब तो हो रही है, जो 79 से इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पे आई थी उसके बाद से जो रिलेशनशिप है स्टेबलाइज नहीं कर सके। दोनों तरफ से डेफिनेटली इश्यूज हैं। तो ये वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट हैं ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल नुक्ता नजर से जो क्लियरली डेवलप हो रही हैं,
अच्छा
उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आप यूरोपियन पे भी देख सकते हैं।
अच्छा तो ये बताइए, अब जो ईरान के वजीर खारजा ने ऐलान किया है कि 25 साल का जो माहदा हो रहा है स्ट्रेटेजिक को एग्रीमेंट चाइना के साथ, क्या आप ये समझते हैं कि इट विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ चेंज इन ग्लोबल सिचुएशन?
ईरान के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा ना कि बहुत अरसे से ईरान को आप कह सकती हैं कि अमेरिका आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर हरफा इस्तेमाल किया गया है वहां पे उनके खिलाफ, और वो भी ब्रेकआउट होना चाहते हैं। यूरोपियन नुक्ता नजर से जो एटॉमिक एरियाज पे सारी बहस है इसको भी सबटाज करने की कोशिश की है। बहुत ही मुश्किल से ये डील बनी थी यूरोप की और जिसमें अमेरिका भी थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तो इन्होंने इस चीज को भी रद्द किया हुआ है और इस पे भी टेंशन है। तो आई थिंक ईरान तो अपनी जगह पे कोशिश पूरी करेगा ना, और चाइना का अपना मफाद है। एक तो चाइना ईरान करीब है जियोग्राफिकली, और दूसरी जो चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमिक बेस है और जो ग्रो भी हो रही है, और उसको डेफिनेटली ऑयल्स की जरूरत होती है और रहेगी। तो ये सारी चीजें है ना जो प्ले इन करती हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ विन विन फॉर चाइना और ईरान नुक्ता नजर से। आई डोंट थिंक अमेरिका इस पर खुश होगा।
अच्छा तो ये बताइए कि आप समझते हैं कि अब जो फोकस है वो ईस्ट के ऊपर हो रहा है?
एब्सोल्युटली, जिसे नजर आ रही है ना कि जो पावर्स जो डेवलप हो रहा है, जो फ्यूचर नजर आ रहा है आज नहीं तो 10-20 साल आगे, तो वो ईस्टर्न पावर्स ज्यादा डेवलप हो रही है ना। तो आई थिंक देयर इज दैट शिफ्ट। क्लियरली अमेरिकन इंटरेस्ट लाइज कि जितना इसको स्लो किया जा सके उतनी इनकी डोमिनेंस ज्यादा रहेगी। लेकिन हिस्ट्री इसके सामने है कि रूज और जवाल जो कौमों पे होता रहता है टाइम है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका हैज हैड अ गुड इनिंग, तो नेचुरली कुछ चेंजेस तो होगी। तो इस वक्त नजर यही आ रहा है इकोनॉमिक लेवल पे पर्टिकुलरली चाइनाज प्रोग्रेस ह्यूज है, और आप देख रहे हैं कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी डेवलपमेंट चाइना की तरफ से भी हो रही है। अभी भी बहरहाल बहुत गैप है मिलिट्री पर्टिकुलरली चाइना और अमेरिका का।
बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब।